ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष सप्ताह भर से जारी है। ईरानी मिसाइलों से मध्य और दक्षिणी इसराइल में कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचा है। उधर इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के अराक भारी जल परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। ईरानी मिसाइलों से 240 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और विमान के पहुंचने की संभावना है। पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहां से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं।
सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इसराइल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल के छोड़ने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को सीमाओं से सड़क मार्ग और उसके बाद हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे। इससे ये संकेत मिलते हैं कि अभी भी कूटनीतिक समाधान संभव है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने बिना शर्त समर्पण करने की डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि अमरीका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शनिवार को श्री मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय कल 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 पर्यटक स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति पार्क का भी शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से आम जनता के लिए खोले जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सिक्किम में आज से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर आज सवेरे नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने परियोजना वित्त पोषण के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें बैंकों को पहले प्रस्तावित धन संबंधी प्रावधान आवश्यकताओं में कमी की गई है। नए मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बैंकों को अब निर्माण चरण के दौरान वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजना ऋण के लिए 1.25% धनराशि अलग रखने का सामान्य प्रावधान समाप्त करना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।